राधा गोपीनाथ प्रभूंच्या आदेशानुसार मी इथे या वासासनावर बसलेलो आहे. खरी स्थिती म्हणजे त्यांची इथे असणं, माझं खाली बसणं, पण कारण की त्यांनी आदेश दिल्यामुळे मला बसावं लागतं इकडे. मी थोडे शब्द बोलेन आणि त्याच्यानंतर राधा गोपीनाथ प्रभू तुमच्याशी चर्चा करेन. आज जो चर्चा करणार आहे हे दुसऱ्या स्कंदचं, श्रीमद भागवतच्या दुसऱ्या स्कंद पहिला अध्याय आणि दुसरा श्लोक, श्लोक क्रमांक 2 वर आज थोडस चर्चा करणार आहोत. श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निणाम संति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्वं गृहेषु गृहमेदिनाम. श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निणाम संति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्वं गृहेषु गृहमेदिनाम. याचा भाषांतर असा आहे की जे व्यक्ती पूर्णप्रमाणे या भौतिक जगामध्ये आसक्त आहेत आणि त्यामुळे ते आत्मतत्व किंवा आत्मज्ञान च्या बद्दल पूर्णप्रमाणे जे आहे अंधकारमध्ये असल्याने ते या भौतिक वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींच्या ह्याच्यात पूर्णप्रमाणे लक्ष देऊन त्याच्यातच दिवस घालतायत. तात्पर्यमध्ये श्रील प्रभुपाद हा प्रसंग असा येतो की पहिल्या स्कंदच्या अंतिम अध्यायामध्ये परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामीला प्रश्न विचारतायत की माझं जीवनाचा उद्देश काय आहे, आणि जो व्यक्ती ज्याची मृत्यू होणार आहे त्याचं कर्तव्य काय आहे किंवा आता मरणार आहे त्याचं कर्तव्य काय आहे. आणि ह्या दुसऱ्या स्कंदच्या पहिल्या अध्यायापासून शुकदेव गोस्वामी बोलायला सुरू करतायत. आणि शुकदेव गोस्वामी ह्या भौतिक जगामध्ये ज्या माणसं आहेत त्यांची काय भावना आहे त्याच्याबद्दल वर्णन करतायत. की ह्या श्लोकमध्ये असं वर्णन केलं जातं की जे व्यक्ती ह्या भौतिक जगामध्ये पूर्णप्रमाणे गुंतलेले आहेत त्यांच्याकडे असे पुष्कळ सारे गोष्टी आहेत चर्चा करण्यासाठी आणि त्याच्यात पूर्णप्रमाणे ते मग्न आहेत. का? कारण त्यांना आत्मज्ञान नाही आहे, त्यांना आत्मतत्वाचं ज्ञान नसल्यामुळे ते पूर्णप्रमाणे जे आहे या भौतिक जगामध्ये गुंतले आहेत. आणि श्रील प्रभुपाद या तात्पर्यमध्ये कोण ग्रहस्थ आणि कोण ग्रहमेदी ह्याच्यावर थोडं जरा आपल्याला शिक्षण देत आहेत. की ग्रहस्थ म्हणजे कोण? ग्रहस्थ म्हणजे ते व्यक्ती जे ह्या भौतिक जगामध्ये असूनही आपलं जे काही कार्य आहे भगवंताला केंद्र ठेवून कार्य करणारे त्यांना ग्रहस्थ म्हटलं जातं. आणि ग्रहमेदी म्हणजे कोण? की जे पूर्णप्रमाणे इंद्रिय तृप्तीमध्ये मग्न आहेत आणि इंद्रिय तृप्तीमध्ये मग्न असल्यामुळे ते भगवंताला जे आहे भगवंताचं स्मरण करू शकत नाहीत ह्या व्यक्तींना ग्रहमेदी सांगितलं जातं. आणि श्रील प्रभुपाद या तात्पर्याने सांगतायत की कसं ग्रहमेदी, कारण की ते भगवंतांच्या बद्दल स्मरण न करत असताना ते अशा कार्यामध्ये गुंतलेले आहेत त्याच्याने आणखीन ते गुंतले जातात या भौतिक नियमामध्ये भौतिक जगामध्ये आणि असं जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये राहतात. आणि श्रील प्रभुपाद सांगतायत की ह्या जगामध्ये अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्याच्यावर आपण चर्चा करू शकतो आणि एक जो व्यक्ती आहे ज्यांना कृष्ण भावना किंवा जो कृष्ण भावनामध्ये नसल्याने तो कसा तो अनेक 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 कार्यामध्ये गुंतलेला असतो. जसं न्यूज पेपर मध्ये लोकांना खूप सवय असते न्यूज पेपर मध्ये काय चाललंय, हा कुठे काय घडलेलं आहे, हा एक प्रकारचा प्रजल्प झाला. आणि श्रील प्रभुपाद म्हणतायत की न्यूज पेपरमध्ये जास्त काही रोज आपण वाचतोय त्याच्यात बातमी काय येतं तेवढंच, कोणाची कुठे मृत्यू झाली असेल, कोणा कुठे जन्म झाला असेल, कुठे इथे हा कुठल्या आजाराने मरत, कुठे कुठे हा काही दुसऱ्या कार्यामध्ये, असं ज्या अनेक ज्या वस्तू ह्या भौतिक जगामध्ये चालले त्याच्याबद्दल सांगतात, जे आपल्याला त्याच्याशी काही संबंध नाही असतो, आपल्याला त्याचा फायदा पण नसतं काही, पण अशा ज्या गोष्टीमध्ये लोक पूर्णप्रमाणे गुंतले असतात. जसे सकाळी उठलं की त्यांना न्यूज पेपर पाहिजे असतं की न्यूज पेपर मध्ये काय चाललंय, कुठे काय झालंय, आणि त्याच्यात चर्चा करण्यामध्ये पूर्णप्रमाणे आनंद घेतात की आज राजकारणामध्ये आज कोण काय करतोय. तुम्ही तासन तास त्याच्यावर चर्चा केले तरी ते जे होणार आहे ते होणारच, तिकडे जे ते निर्णय घेणार असेल ते निर्णय घेणारच. किंवा स्पोर्ट्स मध्ये ह्यानी हो असं असं खेळला तो तसं खेळला, त्याने असं खेळायला नाही पाहिजे होतं, त्यांनी तसं खेळायला नाही पाहिजे होतं, त्याच्यावर तासन तास जितके तुम्ही चर्चा करणार त्याच्याने काय फायदा होणार, तो खेळणारा तो खेळणारच तिथे. तुम्ही चर्चा करतो तुम्हाला काय त्याच्याने पैसे मिळणार नाही, किंवा तुम्ही त्यांना त्यांचा वावाकार करून किंवा त्यांचा शाबाशकी करून तुम्हाला काय त्यांना ते पोस्टने तुम्हाला काय पैसे पाठवणार नाही, किंवा तुम्ही आमचे वावार काय केलं जे जे कार केलं तुम्ही पूर्ण दिवस तुमचं काढलं मला खेळताना बघायला म्हणून तुमच्याकडे तुला पैसे पाठवतो थोडं, काही नाही फायदा काय होतच नाही आपल्यात. किंवा चित्रपट लोक त्याच्यात वेळ काढतात पैसे घालतात. आता एका सिनेमा हॉलमध्ये जायला एक तासाचं किंवा दीड तासाचं पिक्चर बघायला कमीत कमी 150 रुपये फक्त पिक्चर बघायला तरी लोक जातात. आणि एक तर नाही दोन तीन, म्हणजे पैसे घालवण्यामध्ये किती लोक उत्सुक असतात. आता मुंबईमध्ये खूप मॉल्स आलेत, मॉल्स मॉल्स म्हणजे काय ते, मॉल म्हणजे 10 वर्षापूर्वी इकडे मुंबईत कोणाला विचारलं तर मॉल काय त्यांना माहिती नव्हतं, फक्त अमेरिकेत असं मॉलचं प्रकरण होतं. मॉल म्हणजे एका बिल्डिंग मध्ये तुम्हाला सगळं काय मिळतं, तुमचं दैनंदिन जीवनामध्ये काय काय जरुरी आहे खाण्याचं पदार्थ सगळं मिळतं, तुम्हाला घालायला अंडरवेअर मिळतं, पॅन्ट मिळतं, शर्ट मिळतं, सगळं काय मिळतं तुम्हाला. जे काय तुम्हाला खरेदी करायचं ते एका बिल्डिंग मध्येच, त्याशिवाय का पिक्चर बघा ते पण तुम्हाला मिळेल तिथे पण बघायला. किंवा तुम्हाला वाटतं की मुलांना, मुलं आम्हाला त्रास देतात शॉपिंग करताना, तर मुलांसाठी पण एक वेगळं एक जागा आहे जिथे मुलांना सोडा एक तासासाठी आणि तिथे सोडून तुम्ही तुमचं कार्य किंवा तुम्हाला जे काय तुम्हाला खरेदी करायचं आहे ते खरेदी करा. म्हणजे एकदा अशा मॉलमध्ये गेलात की लोकांचा खिसा खाली होतो, तुमची इच्छा नसेल तरी 1000 रुपये तर असेच जातात. जेव्हा बाहेर आलं तर मग कळतं की कशाला मी एवढं काय घेतलं, पण सगळं एवढं झगमग 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 असतं ना, म्हणजे एवढं आकर्षित असतं सगळे, म्हणून असं वाटतं की घ्यावं असं वाटतं, आणि सगळे लोक त्याच असतात. म्हणजे हा एक मॉल हा असा एक म्हणजे भौतिक दुनिया म्हणू शकतो, छोटी दुनिया की ज्यात पूर्णप्रमाणे तुम्ही भगवंताला विसरू शकता तिकडे. कारण भगवंताला कसं विसरायचं हे तुम्ही मॉलमध्ये जाऊन तुम्हाला समजतं, तुम्हाला भगवंताची कधी आठवण येणारच नाही तिकडे मॉलमध्ये. आणि असे मुंबईमध्ये असे आत्ता 50 मॉल्स आहेत आणि आणखी 150 मॉल येणार आहेत. म्हणजे तुम्हाला लोकांना आता लोकांना असं कन्फ्युज होतं की मी कुठे जाऊ, इथे जाऊ की इथे जाऊ, मग त्याचे ते डिसिशन घ्यायला ते 10 दिवस घेतात की या रविवारी मी आम्ही कुठे जायचं, कुठल्या मॉलमध्ये जायचं, कुठल्या मॉलमध्ये माझी इंद्रिय तृप्ती जास्त होईल, असं करून करून एका माणसाचं पूर्ण जीवन निघून जातो. निणाम संती सहस्रश म्हणजे सुखदेव गोस्वामी म्हणतात असे अनेक 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 योजना अनेक अनेक गोष्टी आहेत ज्याच्यात माणूस पूर्णप्रमाणे गुंतलेला असतो. ग्रहमेदी आणि ह्याला ग्रहमेदी म्हटलं जात. आणि असं ग्रहमेदीला ईर्षा, भगवंताप्रती ईर्षा असं पण सांगितलं जातं की भगवंताप्रती ईर्षा करतं. कारण का? कारण जो व्यक्ती भगवंताचं स्मरण करत नाही म्हणजे स्वाभाविक आहे की तो भगवंताच्या प्रती ईर्षा करतोय. आणि एक सुंदर उदाहरण दिलंय की कसं ह्या भौतिक जगामध्ये एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीची प्रगती, भौतिक प्रगती झाली तर त्याला ईर्षा होते, त्याला आनंद नाही वाटत. तुमच्या शेजारच्याकडे एक फ्रीज आला तर तुमच्याकडे पण एक फ्रीज पाहिजे, त्यांच्याकडे मारुती असेल तर तुमच्याकडे काहीतरी जास्तच पाहिजे, सेंट्रो पाहिजे. म्हणजे एवढं जास्त मला नाही वाटत कोल्हापूरमध्ये, पण मुंबईमध्ये हे एकदम जास्त म्हणजे चांगल्या प्रकारे दिसतं. म्हणजे एवढी कॉम्पिटिशन असते तिकडे की एका व्यक्तीकडे एक काय गोष्ट दिसली तर माझ्याकडे पण ते पाहिजेच, माझ्याकडे ते नसेल तर मी अशांत. म्हणजे माझ्यात काहीतरी कमी आहे, कमी पण हा जो आहे व्यक्ती जो हे भावना व्यक्त करतो. तर अशा प्रकारे हे ग्रहमेदी एकमेकांच्या प्रती जे आहे ईर्षा करत असतात. कारण का? भगवंताच्या प्रती ईर्षा असल्यामुळे. आणि श्रील प्रभुपाद म्हणतायत की हा जो भौतिक नियम आहे हा सगळ्यांवर आहे लागू. कोणी ह्याच्यातनं सुटकारा पाहू शकत नाही, सगळ्यांना हा भौतिक नियमचा लागू होतोय. जनस्य मोहम अहम ममेती पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावमेत तयोर मितम तुझे ग्रांती राहुर अत ग्रह क्षेत्र सुत आप्तवित्तेर जनस्य मोहम अहम ममेती. आणि कसं होतं जेव्हा एक व्यक्ती एक स्त्रीशी जेव्हा आकर्षित होतोय तयोर मितुर दुधय ग्रांतीर आवूर, फक्त इंद्र तृप्ती करण्यामध्ये किंवा जेव्हा हा केंद्र असत तेव्हा काय होतं त्यांची हृदय ग्रंथी आणखीन म्हणजे काय म्हणतात घट्ट होत. अत गृह क्षेत्र सुत आप्तर वित्ते. मग काय होतं जेव्हा मुलगा मुलगी एकत्र आल्यावर घर पाहिजे हो की नाही, मग घरसाठी परिश्रम करावं लागतं. अच्छा, परिश्रम केल्यानंतर ग्रह क्षेत्र सुत आप्त वित्तेर, एकदा पती पत्नी एकत्र आले की मग मुलं मुलांचं देखरेख करण्यासाठी सगळे काय तयारी करता करावं लागते, आणावं लागतं घरी. अच्छा, घर आहे, मुलं आहेत, मग सगळ्यांना दुकानात दाखवायला पण पाहिजे ना, आमच्याकडे हा घर आहे, या आमच्या घरी जेवायला या. उद्देश म्हणजे कसं असतं, आमच्या घरी जेवायला या म्हणजे आमच्या घरी या आणि आमचं घर बघा किती चांगलं घर आहे, उद्देश तो असतो. मी अबक्त असं म्हणतोय मी, म्हणजे आमच्या घरी या, आमच्या घरी या म्हणजे आमच्या घरी या आणि बघा हे माझी पत्नी, हे माझे मुलं, हा माझा घर, हा माझा संसार. आणि या सगळ्यासाठी पैसे लागतात, पैसे कमवण्यामध्ये पूर्ण प्रमाणे गुंतले असतो. जनस्य मोहम अहम ममेती, की जे काय माझ्यासाठी आणि जे काय माझ्या संबंधी जे काय आहेत त्याच्याबरोबर त्यांचं जे काय त्यांची संतुष्टीसाठी जे काय करणं आवश्यक आहे ते मी करणार. ह्याच्यात सांगितलं गेलंय अपश्यताम आत्मतत्वम. कारण की भगवंतांच्या प्रती जे उद्देश आहे ते नसल्यामुळे व्यक्ती पूर्ण प्रमाणे ह्याच्यात गुंतलेलं असतं. वेगळ्या प्रकारे हे जे भौतिक जगामध्ये आकर्षित करणारे गोष्टी आणि त्याच्यात गुंतलं जातं. आणि श्रील प्रभुपाद सांगतायत की जेव्हा जो व्यक्तीला हे माहिती पडतं की माझा जीवनाचा उद्देश म्हणजे भगवत धाममध्ये जाणं किंवा आता मनुष्य शरीर प्राप्त झालेलं आहे आणि मनुष्य शरीर प्राप्त झाल्यानंतर माझा उद्देश काय, हा मनुष्य शरीराचा उद्देश काय, की परत भगवत धाम जाणं. जोपर्यंत ही जाणीव होत नाही तोपर्यंत ह्या भौतिक जगामध्ये गुंतलेलं असतं. आणि ते कसं होतं? ते फक्त श्रवण कीर्तन नव्हतं. जेव्हा व्यक्तीला जेव्हा एका व्यक्तीला ही संधी मिळते भगवंताच्या बद्दल श्रवण करण्यासाठी आणि भगवंताच्या बद्दल कीर्तन करण्याची जेव्हा संधी मिळते, जेव्हा ह्या श्रवण कीर्तन च्या मार्गावर जेव्हा एक व्यक्ती लागतोय तेव्हा तो भगवंताम जाण्याच्या मार्गावर येतो. आणि श्रील प्रभुपाद म्हणत आहे की हा किती सरळ मार्ग आहे, की ह्या कलियुग मध्ये हा एवढा सोपा मार्ग आहे की जिथे कोणीही व्यक्ती कुठलाही म्हणजे स्थितीमध्ये किंवा कुठल्याही शरीरामध्ये कुठलाही वयाचे असेल, कोणी वयस्कर असेल, कोणी लहान मुलं असेल, कोणी तरुण असेल, कोणी व्यक्ती हे कार्यमध्ये लागू शकतो श्रवण कीर्तनच्या कार्यमध्ये. आणि हा युगधर्म आहे श्रवण कीर्तन. म्हणजे कलियुग मध्ये एवढा सोपा करून दिलेला आहे खास करून चैतन्य महाप्रभू. जेव्हा चैतन्य महाप्रभू जेव्हा दक्षिण भारतच जेव्हा यात्रा करायला निघालेले तेव्हा कुरुक्षेत्रमध्ये ते एका कुर्म ब्राह्मणाला भेटले. आणि कुर्म ब्राह्मण एक गृहस्थ होते, म्हणजे घरी आपले संतान पत्नी सकट राहायचे, त्यांचा एक कारभार पण होता आणि धनवान होते. असं नव्हतं की ते गरीब होते, म्हणजे कुलापासूनच म्हणजे पैसे धन सगळे होते. पण ज्यांनी पाहिलं की चैतन्य महाप्रभू एक संन्यासी आले तर त्यांनी त्यांना घरी आमंत्रण दिलं, त्यांना बसायला जागा दिली, म्हणजे एक आसन दिलं आणि त्यांचा पाय धुतले पाण्याने आणि ते चरणामृत जे आहे स्वतः घेतलं आणि त्यांच्या पूर्ण परिवाराला पण ते दिलं त्याचं चरणामृत. आणि कारण चैतन्य महापुरुषी ज्यांचा संघ झाला तेवढा लव मात्र संघ असताना आणि चैतन्य महाप्रभू जेव्हा तिकडनं निघायला उठले तेव्हा ते एकदम पूर्णप्रमाणे जे आहे म्हणजे रडायला लागले तिकडे. आणि मग निमंत्रण करायला लागले, चैतन्य महाप्रभू सांगितलं रिक्वेस्ट विनंती करायला लागले, कृपा करी प्रभु मोरे या तो मा संगे सहिते ना पारी दुख विषय तरंगे. कृपा करी प्रभु मोरे या तो मा संगे, ये प्रभु माझ्यावर कृपा करा कि मी तुमच्या बरोबर जाईन, मला तुमच्यावर घेऊन जा. कृपा करी प्रभु मोरे या तो मा संगे सहिते ना पारी दुख विषय तरंगे, कि मला आता सहन होत नाही हे सगळे, हे ग्रस्त मध्ये राहून पत्नी मुलांचं देखभाल हे सगळं करणं विषय तरंगे ह्या पूर्ण या जगामध्ये पूर्ण प्रमाणे जो आहे ह्या विषय सुख मध्ये जो आहे पूर्णपणे गुंतलेला आहे, तर मला जरा तुम्ही माझ्याबरोबर तुमच्याबरोबर घेऊन चला. आणि शिल प्रभुपाद त्या तात्पर्य सांगतायत की कसं नरोत्तमदास ठाकूर संसार विषाणले दिभानिशी ह्या जेवले, की हा संसार जो आहे हा पूर्ण प्रमाणे म्हणजे काय म्हणतात ज्वले, म्हणजे पूर्ण असं आग आगासारखं, जसं तुम्ही आगाच्या समोर गेलं की तुम्हाला पूर्ण त्याच उष्णता जाणीव होते, तसं ह्या जीवनामध्ये तुम्ही जे काय करू कुठल्याही परिस्थितीत असू द्या. आणि शिल प्रभुपाद सांगतायत की कोणी एका श्रीमंत व्यक्ती असेल तरी त्याला हे दुःख भोगावंच लागते या जगामध्ये, या जगामध्ये दुःख भोगावंच लागते, हे त्रिविध ताप येणारच, आदिभौतिक आदिदैविक आध्यात्मिक हे क्लेश येणारच. कोणी असं व्यक्ती सांगू शकत नाही की मी पूर्ण प्रमाणे स्वस्थ आहे. म्हणून नरोत्तमदासकर दुसरीकडे पण सांगतात, विषया छाडिया कबे शुद्ध अभिमान कबे हमा हेरबो श्री वृंदावन. की कधी मी या भौतिक जगातनं सुटकारा पाहिन आणि कधी मी वृंदावन. आणि हे कुरुम ब्राह्मणचा साक्षात्कार होता. आणि कुरुम ब्राह्मण तेव्हा चैतन्य महाप्रभूंना विनंती करत होते की मला इकडनं आता पार काढा. आणि चैतन्य त्यांना काय सांगितले, प्रभू कहे यायची बात कभी न कबू न कहिबे ग्रिये राई कृष्ण नाम निरंतर लैबे. प्रभू कहे यायची बात कभी न कबू न कहिबे. प्रभू म्हणाले की तू असं बोलू नकोस परत, यायची बात कबू न कहिबे ग्रिये रे कृष्ण नाम निरंतर लैबे. तू घरी असूनही तू काय करायचं, निरंतर कृष्ण नाम घे. तू तू निरंतर कृष्ण नाम घेतली घेतलास तर तुला काही होणार नाही. आणि प्रभू म्हणाले, यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश आमारा ग्या गुरु है तारे देश. आणि काय करायचं, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश. तुम्ही घरी राहून निरंतर कृष्ण नाम घ्या आणि त्या सकट जो कोणी तुम्हाला मिळेल त्यांना फक्त कृष्ण उपदेश द्या. यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश आमारा ग्या गुरु होय तारे देश. आणि मग चैतन्य बाबू म्हणतायत की तू असं केलंस तर परत मी तुला ह्या स्थानावर तुला भेटेन, कधी तुला माझ्या प्रति विस्मरण होणार नाही. जोपर्यंत तू हे कार्य करतोयस तोपर्यंत दरवेळी तुला माझं स्मरण होईल आणि मी परत तुला इथेच भेटू शकतो. आणि शिल प्रभुपाद ते तात्पर्य सांगतायत की जो कोणी व्यक्ती कुठल्याही परिस्थितीत असेल जर त्या व्यक्तीनी निरंतर कृष्ण नाम घेतलं असेल आणि त्याच प्रकारे त्याचबरोबर प्रचार कार्यामध्ये लागलेले असेल निरंतर, तर त्याला निश्चित भगवत धाम प्राप्त होणारच. म्हणजे हे श्रील प्रभुपादांचं आस्वादन सगळ्यांना. म्हणजे आणखी काही कार्य करण्याची आवश्यकता नाही आपल्याला, फक्त काय करायचंय, श्रवण केल्यानंतर कीर्तन. आणि जो कोणी तुम्हाला सापडते किंवा जो कोणी तुम्हाला भेटते त्यांना तुम्ही कृष्ण उपदेश द्या. आमार आज्ञे गुरु हे तारे देश. मी तुम्हाला आज्ञा देतोय की तू गुरु, माझ्या आज्ञावर तू गुरु हो आणि तू दुसऱ्यांना उपदेश दे. तू जे काय ऐकलेस ते दुसऱ्यांना सांग. आणि अशा केल्याने मग काय होणार की परत चैतन्य म्हणताय परत तुम्ही माझ्याकडे येणार. आणि शिल प्रभुपाद तात्पर्य सांगतात की हे निश्चित आहे की जो व्यक्ती श्रवण कीर्तन मध्ये पूर्ण प्रमाणे लागलेले आहेत तो व्यक्ती जो आहे कृष्णा म्हणजे भगवत धाम मध्ये जाणं योग्य होतो. आणि शिल प्रभुपाद अनेक जाग्यावर शिल प्रभुपादने आपल्या तात्पर्यात सांगितलंय की हे जे श्रवण कीर्तन किती महत्वाचं आहे, की आपण जेव्हा श्रवण कीर्तन मध्ये आपण जेव्हा लागतोय आणि जितकं आपली म्हणजे योग्यता असेल आपल्या क्षमताने आपण प्रचार कार्यामध्ये लागतोय. कारण हे चैतन्य महाप्रभूच्या आंदोलनामधले आहेत. आपण चैतन्य महाप्रभू ही घोषणा केलेलीच आहे, पृथ्वी ते आचिया ते नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार होईब मोर नाम. तर हे होणारच, पण आमचं ह्याच्यात काय, जसे म्हणजे आम्ही ह्या प्रचार कार्यामध्ये भाग घेणं. फक्त मी ह्याच्यात भाग घेतलं तर आमचं पण उद्धार होणं निश्चित आहे. तर हे शिल प्रभुपादाने आपल्याला आश्वासन दिलं आहे. आणि शिल प्रभुपाद ह्या तात्पर्यमध्ये तेच सांगतायत की एकच कार्य करायची आवश्यकता आहे, बस फक्त भगवंताबद्दल श्रवण, भगवंताबद्दल कीर्तन. म्हणून श्रवण पहिलं, कारण जोपर्यंत तुम्ही श्रवण नाही करणार तोपर्यंत काय कीर्तन करणार? हा, श्रवण हा खूपच महत्व आहे. श्रवण करणं, आता जे आम्ही कार्य करतोय इकडे, हे सगळ्यात महत्वाचं कार्य आहे या कलियुगामध्ये, कि तुम्ही श्रवण करतायत आणि मी कीर्तन करतोय असं. आणि हे किती सोपा प्रकरण. श्रील प्रभुपाद म्हणतायत एका तात्पर्यमध्ये, या जगामध्ये जे पाप करण्यासाठी खूप कष्ट करावं लागतं, जुगार खेळा, मांसाहार करण्यासाठी, स्त्री व्यभिचार आणि धूम्रपान, खूप परिश्रम करावं लागतं इकडे. मुंबईमध्ये कुठे बार रेस्टॉरंट उघडायचं असेल, त्यांना लायसन्स स्पेशल काढावं लागतं, त्याचे पैसे भरावे लागतात, पोलिसांना हप्ता द्यावा लागतो, जेलमध्ये पण जाणं होत. तुमच्याकडे ड्रग्स सापडला तरी तुम्हाला जेलमध्ये जावं लागतं. तुम्हाला माहित आहे मुंबईत काय चाललंय. एक ऍक्टरला ड्रग ड्रग नाही म्हणजे त्यांच्याकडे बंदूक सापडला त्याला आता शिक्षा मिळाली आहे. जे काय हे सगळं कार्य करायला खूप परिश्रम करावा लागतो, खूप पैसे जातात त्याच्यात सगळं काय. आणि वरून काय होतं, वरून पाप कर्म पण आपल्याला घ्यावं लागतं आपल्या अंगावर. पण हे एवढं सोपं आहे की जिथे फक्त बसून ऐकायचं, कीर्तन करायचं आणि बाय प्रसाद घ्यायचं. किती सोपं आहे ना, चॅन्टिंग, डॅन्सिंग अँड फिस्टिंग. शिल प्रभुपाद सांगतात किती सिंपल, म्हणजे एवढं चांगली सोय या कलियुगमध्ये आपल्यासाठी केलेली आहे. काही करण्याची आवश्यकता नाही, बसायचं, ऐकायचं, थोडं नाचायचं, कीर्तन करायचं आणि मग भूक लागली तोपर्यंत भूक लागतेच, मग प्रसाद घ्यायचं आणि घरी जायचं. मग परत रविवारी यायचं, परत असंच. आणि असंच करत गेला तर काय होतं, प्रभुपादांचं आस्वादन आहे आपल्याला. प्रभुपाद स्वतः म्हणतायत, यु आर गोइंग बॅक होम, बॅक टू गॉड. आहे म्हणून तर किती शहरामध्ये, परवा दिवशी श्रीधाम प्रभू म्हणत होते, या जगामध्ये पृथ्वीवर 217 देश आहेत, एकूण 217 देश. आणि किती देशामध्ये इस्कॉनचं प्रचार होत आहे, 187 देशामध्ये कृष्ण भावना प्रचार होत गेला. आता फक्त 20 राहिलेत सेंटर्स. 187 देशामध्ये हे चाललंय आहे आणि आता 20 देशामध्ये थोडंफार इकडे तिकडे आहे पण प्रोसेस चालू आहे. आणि एक व्यक्ती आपले म्हणत होते, एक आपले भक्त आहेत, त्यांचं कार्य म्हणजे प्रत्येकडे इकडे जायचं तिकडे जायचं कंपनीच्या कार्यासाठी. म्हणाल की 5 वर्षापूर्वी जेव्हा जायचो इकडे मला खूप कंटाळा यायचा, पण आता कंटाळा नाही, कारण आता जेव्हा मी जातो ना, जायच्या आधी ते सगळं माहिती करून घेतात की कुठे कुठे सेंटर आहे इस्कॉनचं. आणि एकाएक ते इस्कॉन सेंटर तिकडे आजूबाजूला असायच आणि तिथे जाऊन जायचं तिकडे भगवंताचं म्हणजे देश त्या मंदिरात जाऊन भक्तांसंग करून त्यांचं कार्य करून परत यायचे. असे करून गेल्या 1 वर्षामध्ये ते कमीत कमी 30 मंदिरात जाऊन आले आतापर्यंत. 30 मंदिरात भारत आणि भारताच्या बाहेर पण. असं म्हणजे हे एक खास कृपा आहे आपल्याला. आणि प्रभुपादांनी हे सगळे असे मंदिर बांधलेत कारण ग्रहस्थांसाठी, आपल्यांसाठी, की आपण येऊ इथे, एकत्र येऊ, एकत्र श्रवण करू, भगवंताचं कीर्तन करू आणि चांगला आदान प्रदान, भगवंताबद्दल चर्चा करून प्रसाद घेऊन मग. तर ग्रह मैदेवून ग्रस्त होण्यासाठी प्रभुपादांनी हा मार्ग आपल्याला दिलेला आहे आणि ही सुविधा प्रभुपादाने आपल्यासाठी करून दिलेली आहे. तर मला फक्त एवढंच बोलायचं होतं, आपल्या मुंबईमधनं श्रीदामा प्रभू आणि किशोरी माताजी आलेत, आणि एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचे की आतापर्यंत ते 5 देशात जाऊन आलेत, युक्रेन, मॉस्को, लंडन, मलेशिया, हाँगकाँग, आणि असं रेग्युलरली जात आहेत तिकडे, आणि तिथे तिकडच्या भक्तांना प्रेरित करतायत सेमिनार्स घेऊन, आणि कसं आदर्श आपण ग्रस्त जीवन पण आपण जगू शकतो, आणि लोक त्यांच्या सेमिनार्सच्या द्वारे त्यांच्या उदाहरणाने लोक प्रेरित होत आहेत तिकडे, आणि एक असे आदर्श ग्रस्त म्हणून लोक त्यांना बघतात पण. तर आज श्रीदाम प्रभू आणि किशोरी माताजी आलेले आहेत, आणि आज श्रीदाम प्रभूकडे पण आपण थोडंफार ऐकू. त्याच्या आधी राधा गोपनर प्रभू बोलतील. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. मुरलीधर प्रभु ने अपने प्रवचन में एक चीज बताया जिसके ऊपर मैं थोड़ा गहराई में सोच रहा था. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ये श्रोतव्यादि राजन जो भगवान के को केंद्र बनाकर श्रवण कीर्तन करते हुए जीवन नहीं जीता है, वो एक्चुअली भगवान से ईर्ष्या कर रहा है. तो ये ईर्ष्या के ऊपर मेरी चर्चा एक व्यक्ति से हुई थी. वो कह रहे थे कि नहीं, मैं भगवान को मानता हूं, मैं आपकी आपके जैसे भक्ति नहीं कर रहा हूं, भगवान को मैं मानता हूं, भगवान है, सृष्टि किए हैं, और मैं अपना जीवन जी रहा हूं. मैं ये स्वीकार नहीं करता आप कह रहे हो कि मैं ईर्ष्या कर रहा हूं भगवान से. अरे भगवान कितने महान हैं, हम तो इतने तुच्छ हैं, कहां भगवान कहां मैं. ये गलत, हम कहां उनकी ईर्ष्या करें, ये गलत है, मैं नहीं मानने के लिए राजी हूं. पर भगवान कहते हैं गीता में, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्षामि अनुसूयवे. जो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त, वो भगवान से ईर्ष्या कर रहा है. इसका मतलब हम भी, अगर हम शुद्ध भक्त नहीं है तो हम भी भगवान से ईर्ष्या कर रहे. आप बोलेंगे क्या क्या प्रभु जी, हम तो हर रोज जपा भी करते हैं, और आप बोल रहे हो कि ईर्ष्या नहीं करते हम भगवान से. ईर्ष्या करते हैं भगवान से, क्योंकि इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्षामि अनसूयवे. जिसके हृदय में भगवान के प्रति असूया नहीं है, सिर्फ वही भगवान के ज्ञान को समझ सकता है, रहस्य को. भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम. तो जब तक हम पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति का मतलब नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम द्वारा, इसका मतलब हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो ये भक्ति सुनने को राजी नहीं. तो बोले मैं स्वीकार नहीं करता. तो ऐसे 2-3 बार हमारा चर्चा हो गया. वो हमेशा उधर ही जाके अटकता था भात, वहां जाके समाप्त हो जाता था. तो एक बार मुझे थोड़ा, मेरे को लगा क्यों सुनता नहीं है ये मेरी बात, और उसको भी लगता था क्यों इसी बात पे अटका हुआ है, मैं नहीं कर रहा हूं ईर्ष्या, और ये बोलता है तू ईर्ष्या करता है, तू ईर्ष्या करता है. मैं बोला मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र बताता है. तो फिर पता नहीं परमात्मा ने कुछ बुद्धि दिया मुझे, तो मैंने उसको तुरंत एक बात बोला जिसके द्वारा बोला सही बात मैं मान गया। वो एक बार ऐसी चर्चा फिर से बात वहीं अटकी तो मैंने कहा एक मिनट अब सुनो, बोला क्या बोलो। उनका बड़ा घर है, बहुत बड़ा बंगला है, तीन नौकर है उनके घर में, एक खाना पकाने के लिए, एक झाड़ू करने के लिए, एक बाहर का काम सब देखने के लिए। तो मैंने उनसे कहा ठीक है आप अगर घर से बाहर दो तीन दिन के लिए गए और वापस आने के बाद आपको पता चला कि आपके जब नहीं थे घर में तो आपका जो नौकर है आपके बेडरूम में जाके आपके पलंग पे हर रोज सोता था, आपका फ्रिज खोल के आपका खास खरीदा घी और मक्खन उसमें से ही खाता था पका के, वो सारा सब्जी उठा के आपके किचन में, आपके बाथरूम में जाके आपका साबुन आपका सेंट वेंट लगा के जाता था, जो भी आप रखे हुए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप कहेंगे ठीक है बेचारा मैं नहीं था, वो तो उपयोग करने के लिए रखा, मैंने तो कोई और करने दो। अगर आप बोलेंगे ना तो फिर हरे कृष्णा कोई यहां हमारा बातचीत बंद। ऐसा ऐसा कैसे कर सकता वो, ऐसा नहीं करना चाहिए उसे। नहीं नहीं किया तो क्या करोगे आप? तुरंत भगाऊंगा उसको। बोले क्यों? खाली था पलंग इसीलिए सोया हो, आप नहीं थे तो सो गया। नहीं नहीं ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उसको पगार देता हूं, उसको खेने के जो उसका देता हूं, मेरा पलंग भी कैसे सो सकता है? मैं मालिक हूं, वो मेरा तो मेरा नौकर है वो। बोला यही बात हुई, यही बात हुई। भगवान का ये सृष्टि है, सब कुछ भगवान का है, और हम जिस हद तक भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, एकमात्र भोक्ता है इस पूरे सृष्टि के, एकमात्र सृष्टि करता है, एकमात्र नियंत्रण करता है वो है भगवान सर्वलोक महेश्वरम। तो जिस हद तक हम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, भले छोटे पैमाने पे, घर का भगवान कम से कम, दुनिया का भगवान, दुनिया सब भगवान कर रहे हैं, ये सब मेरा है, इतना जो मैंने खून पसीने एक करके बना ये मेरा है, ये मेरा भोग करने के लिए, उस हद तक बड़े सूक्ष्म रूप से हम भगवान बनने की इच्छा और भगवान को दूर करने की जो प्रवृत्ति है वो हम दिखा रहे हैं। इसीलिए हर बार हम इंद्र तृप्ति में लगते हैं तो भगवान के प्रति ईर्ष्या दिखा रहे। जीवेर स्वरूप होए कृष्णर नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। एक्चुअली जब मालिक अपने एसी गाड़ी में जाता है तो ड्राइवर भी एसी गाड़ी में बैठता है कि नहीं? ऐसा नहीं कि ड्राइवर के लिए चेंबर बना के तू बाहर का हवा खा, नहीं, अरे एसी गाड़ी में वो बैठा तो ये भी बैठेगा, तो गाड़ी तो वही चला रहा है, भले एसी गाड़ी चला रहा है वो, पर अगर क्योंकि वो एसी गाड़ी चला रहा है उसके मन में अगर ये आ जाए कि वो भी एसी गाड़ी में बैठा है मैं भी एसी गाड़ी में बैठा हूं, मैं भी मालिक हूं ना, तो जहां चाहे वहां अगर गाड़ी घुमाए तो उसी दिन वो गाड़ी से बाहर हो जाएगा परमानेंटली। अरे मूर्ख ऐसा कैसे, मेरा गाड़ी है, मैं तेरे को जहां बोलता हूं वहां चला, बस तू अपना स्वरूप को मत भूलना कि तू नौकर है, तू गाड़ी का मालिक नहीं है। इस तरह से ये गाड़ी जो है ना हमारा यंत्रारूढ़ाणी माया, ये शरीर जो है इसका मालिक हम नहीं है, ये भगवान का देन है हमारे लिए। जिस हद तक अपनी इच्छा अनुसार इस शरीर को उपयोग करते हैं, जिसके लिए भगवान ने दिया है उसके अलावा, उस हद तक हम लोग भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए भगवान की ईर्ष्या हम लोग भले स्थूल रूप से रावण जैसे विरोध नहीं कर रहे हैं, पर सूक्ष्म रूप से कह रहे हैं प्रभु तुम भी भगवान हो, पर छोटे तक मैं भी भगवान, और ये भगवान बनने की प्रवृत्ति जो है हमको यहां बांध के रखा हुआ है इस संसार में। जब हमको 100% कन्विंस हो गया कि हमारा एकमात्र स्वरूप है और वो स्वरूप है कृष्णदास, बस उसी दिन हम लोग भगवत धाम वापस चले जाएंगे। और दास यानी प्रभु की सेवा, और सारे शास्त्रों का मर्म यही है। बस सारे शास्त्रों का सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य के ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, हजारों हजारों ग्रंथ हैं वैदिक संस्कृति में, वैदिक वांग्मय हजारों हैं, इतने सारे उपनिषद, इतने सारे पुराण, इतने सारे क्या बोलते हैं आगम शास्त्र, बहुत सारे हैं ऐसे, इतने सारे शास्त्र, और उस शास्त्रों में इतने सारे रीति रिवाज बताए गए हैं, ये करो ये करो, जब करो तब करो, दान करो ये करो, बहुत सारे रीति रिवाज बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, और इन नियमों को सब उतारने के लिए करोड़ों साल लग जाएंगे, जितना हम जी ही नहीं सकते, हम सब साल जीते हैं। और कलयुग क्या है, प्रायण अल्पायुष है, आयु भी कब बड़ी कम है, तो कृपया आप सारे शास्त्रों का मर्म दे दीजिए, बस एक वाक्य में बताइए, एक वाक्य में हमें बताइए कि सारे शास्त्रों का मर्म क्या है। तो सुत गोस्वामी ने बोला, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। तस्माद भारत सर्वात्मा, क्योंकि अहैतु की अप्रतिहता भक्ति ही आत्मा को तृप्त कर सकती है, तस्मात इसीलिए हे भारत, हे भरतवंशी, सर्वात्मा सब जीवों के जो आत्मा है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, भगवान ईश्वर हरि ही, वो ईश्वर हैं, हम सब उनके सेवक हैं, हरि ही जो सारे हमारे अमंगल को हरण कर लेंगे अगर हम उनकी शरण जाएंगे। जिस प्रकार एक नौकर अच्छे तरह से मालिक की सेवा करता है तो मालिक उसका सब कुछ देखभाल करता है। श्रोतव्य, सबसे पहले सुनो, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, सुनने के लिए भगवान ने कान दिया है, इस कान के अंदर कचरा नहीं भरना चाहिए हमको, इसको हमने कचरा का पेटी बना के रख दिया है, हजारों दुनिया भर की चीजें हम उसको घुसाते कान। सुत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो कान जिसमें भगवान की कीर्ति गान नहीं जाती है, वो कान सांप घुसने वाले छेद होते ना, वो छेद है, क्योंकि और जो भी सुनते हैं वो हमको प्रभु बनने की इच्छा बढ़ाती है। तो श्रोतव्य, क्योंकि जिसके बारे में सुनोगे कीर्तितव्यश्च, उसके बारे में गुणगान करोगे, जिसके बारे में बार बार सुनोगे उसका गुणगान करोगे कीर्तितव्यश्च, जिसका गुणगान बार 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 करोगे, जिसके बारे में बार बार सुनोगे उसके बारे में स्मरण होगा हमेशा, और जिसका स्मरण होगा बार बार उससे प्रेम बढ़ जाएगा, और जिससे प्रेम बढ़ जाएगा पूज्यश्च, उसकी पूजा करेंगे, उसको फोटो लगा के हम पूजा करेंगे। तो किसके बारे में सुन, आप बार बार अगर एक फिल्म हीरो के बारे में सुनेंगे, बार बार उसका पिक्चर देखोगे, बार बार उसका गुणगान सुनोगे, नाम रूप गुण लीला उस व्यक्ति के बारे में बार बार सुनोगे, तो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में बोलोगे, वो क्या कर रहा है मालूम, आज उसका किसके साथ चल रहा है मालूम, और हमेशा कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करते करते ध्येय हमेशा उसके मन में वही रहेगा, कितना सुंदर, कितना लंबा नाक है उसका, कितना अच्छा कान है उसका, हेयर स्टाइल आज उसका थोड़ा बदल गया है, आज वो ये कपड़ा पहनता है, और अंततः आपके हर एक कमरे में उसका फोटो आ जाएगा और उसकी पूजा करने शुरू करोगे। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा सततम कीर्तयन्तो, सतत उसका कीर्तन हो जाएगा, या कोई फिल्म हीरो, या कोई स्पोर्ट्स हीरो, या कोई पॉलिटिकल हीरो, जिसके बारे में हम बार बार सुनेंगे उसके बारे में बोलना शुरू करेंगे, जिसके बारे में बोलना शुरू करेंगे बार बार उसका स्मरण करेंगे, जिसका स्मरण करेंगे उससे प्रेम हो जाएगा, और जिससे प्रेम हो जाएगा उसको पूज के उसकी शरण जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं आप साधु संग सर्वशास्त्र को सत्संग किया करो, क्योंकि सत्संग में जो कोई भी हमारी बातचीत होती है दो ही चीजों की होती है, भगवान के बारे में होती है या उनके भक्तों के बारे में होती है, जो सही में हीरो हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही तरह से भक्ति की है। सबसे बड़ा हीरो कौन है? जिसको अवार्ड, अवार्ड जिसको मिलता है वो हीरो। अवार्ड को भगवान जिसको पहचानते हैं, जिस व्यक्ति को भगवान पहचाने वो हीरो, पूरे भगवत धाम मतलब पूरे भगवान के सृष्टि में वो हीरो बन जाता है, पूरी दुनिया जानी। प्रहलाद महाराज, अरे सतयुग का आदमी, 5 साल का लड़का, सबसे बड़ा राक्षस का लड़का, पर जहां भी भक्तों की सभा एकत्र होती है, देवताओं में भी, वहां प्रहलाद महाराज की चर्चा होती है। क्यों? वो हीरो बन गया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े हीरो जो भगवान है उसको स्वीकार किए, ये बोले ये मेरा आदमी है। बस तो हमेशा कौन सा सतयुग का फिल्म हीरो? आज हम सतयुग में पहले फिल्म था ही नहीं, सतयुग छोड़ो, त्रेता युग में भी था नहीं, द्वापर में भी था नहीं, कलयुग में भी था नहीं, पिछले कुछ कई 100 साल से शुरू हुआ। बस उसमें कितने हार, कितने आए, कितने गए। जो 1920 के हीरो थे वो हीरो और उसको पूजने वाले वो लोग भी गए, कोई नहीं रहा। पर सतयुग में आए हुए भगवान नृसिंहदेव और उनके पूजने वाले वो आज भी देवताओं में और भक्तों में हीरो है। हमारा मंगल आरती नरसिंहदेव और प्रहलाद महाराज के बिना खत्म ही होता नहीं, हर एक पूरे विश्व भर में उसकी उनकी स्तुति होती है। तो श्रोतव्य उसके बारे में सुनो, तो कीर्तितव्यश्च उनके बारे में गुणगान करो, क्योंकि वो परम पवित्र हैं। उनके बारे में सुनने से और कहने से जैसा संग वैसा रंग, परम पवित्र करने पवित्रता आ जाती है हृदय में, दूसरे विचार अपने आप चले जाते हैं, भर जाता है। जब कान भर गया, पैक हो गया, हाउसफुल हो गया और कोई जगह ही नहीं, पूरा पैक हो गया। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, तो स्वाभाविक रूप से सुन सुन के उसी के बारे में हम गुणगान करेंगे। वाह क्या लक्षण, क्या अच्छे गुण, कितने अच्छे उनके कार्यकलाप। कीर्तितव्यश्च ध्येय, इसीलिए हमेशा उसका ध्यान करेंगे, और ध्यान करते 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 स्वाभाविक है जिस व्यक्ति का ध्यान करते उसके प्रति प्रेम आ जाता है। खास करके उनके अच्छे गुण, महान गुणों के बारे में ध्यान करेंगे तो उनसे स्वाभाविक रूप से प्रेम आ जाता है। और पूज्यस्य नित्यदाम, तो इस तरीके से जैसे प्रभु जी बता रहे थे, प्रभुपाद जी की कृपा है, उन्होंने एक ऐसा जगह दिया है, ऐसा एक वातावरण बनाने के लिए एक अनुकूल मार्गदर्शन दे दिया है कि एक्चुअली वही मंदिर है जहां ये चार चीज हो रहा है। श्रोतव्य, लोगों को सुनने के लिए एक अच्छा फैसिलिटी, लोगों को कीर्तन करने के लिए, कीर्तिगान और उसका श्रवण करने के लिए एक अनुकूल वातावरण, ताकि बार 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 सुनने से ध्यान करेंगे और ध्यान करने के बाद दूसरे छोटे 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 जितने सारे हीरो हमारे हृदय में भर के बैठे हुए हैं वो सब छोटे छोटे जुगनू के समान है। जब कृष्ण जैसा सूरज का उदय हो जाता है, नायकानाम शिरोरत्नम कृष्णस्तु भगवान स्वयं यत्र नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणा। रूप गोस्वामी कहते हैं अरे नायक, हर एक व्यक्ति नायकों के पीछे है, कोई ये हीरो कोई वो हीरो, कृष्ण भावना में आने से पहले बहुत सारे हीरो हो गए हमारे, है कि नहीं? हर एक का अपना अपना हीरो था, पर अंधकार में होने के कारण जब पूरा अंधकार हो जाता है तो छोटे छोटे जुगनू आते, लाइट लाइट लाइट, जहां भी थोड़ा लाइट आया उसकी ओर लाइट की ओर देखते, पर सूरज उग गया तो कोई लाइट को देखता है जुगनू के? छोटा मोमबत्ती कोई पकड़ के देखता है कोई? सूरज उग गया तो बस सारे अपने छोटे जो जुगनू है अपने आप खत्म हो गए। तो नायकानाम शिरोरत्नम, सारे नायकों में शिरोरत्न जो है, शिरोमणि, नायकानाम शिरोरत्नम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण है। क्यों? यत्र नित्यतया, हमेशा के लिए, परसों का हीरो आज का जीरो। क्यों? अभी वो बूढ़ा हो गया, अभी उसका यश खत्म हो गया, अभी उसका फिल्म चलेगा नहीं, फिल्म में बड़े बड़े 4-50 गुंडों को मारता है पर शूटिंग से बाहर आता है तो 2 गुंडे उसको उड़ा देते हैं। क्या हो गया? वो गुंडे लोगों ने मार दिया हीरो को, बस इसीलिए आधा फिल्म में ही खत्म हो गया, शूटिंग बंद। पर यत्य नित्यतया सर्वे, भगवान ऐसे हीरो हैं, करोड़ों करोड़ों लोग आए, पूरी अक्षोहिणी सेना, 23 अक्षोहिणी सेना को लेकर जरासंध ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया, भगवान अकेले, उनकी सेना भी नहीं, अकेले उड़ा दिए उसको, एक बार नहीं 17 बार उड़ा दिए। ये हीरो, यत्य नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणा, सारे महान गुण हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण मौजूद है, और उस हीरो के बारे में नहीं सुनने के कारण छोटे मोटा हीरो, तथाकथित हीरो को पूजना शुरू करते हैं, कीर्तन करना शुरू करते हैं, ध्यान करना शुरू करते हैं, और उनको शरण जाते हैं, वो भी मरता है, हम भी मरते हैं, दोनों खड्डे में गिर गए। पर जब भगवान की शरण गए, उनके भक्तों की शरण गए, तो वो जहां जाते हैं हम भी वहां जाते हैं। जैसा जैसा स्मरण करोगे वैसा जाए, क्या है वो, यान्ति देवव्रता देवान, देवताओं की श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य करोगे तो देवताओं के लोकों में जाओगे। यान्ति देवव्रता पितृन यान्ति पितृव्रता, पितरों की पूजा करोगे, मेरे दादाजी, उनके परदादाजी, उनके परदादाजी, परदादी, वो जहां परदादाजी हैं आप भी वहीं जाओगे। पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्जा, भूत प्रेतगण को करोगे तो उसी पेड़ पे लटके रहोगे, तो उसके साथ भूतानि यान्ति भूतेज्जा यान्ति मद्याजिनोपि माम, जो मेरी पूजन करता है, भगवान कहते हैं वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, और प्रभुपाद जी की कृपा से ये अच्छा मौका मिला है हमको, यही एकमात्र इस संस्था का उद्देश्य है, सत्संग का उद्देश्य है, यही शास्त्रों का उद्देश्य है, कि एक ऐसा परिस्थिति, ऐसा अनुकूल वातावरण हो जहां इस रेगिस्तान में, इस भौतिक संसार के रेगिस्तान में एक शीतल जल का जो फव्वारा है उसका सब लोग आश्रय ले। तो ये बड़े बड़े हीरों के बारे में सुनना रेगिस्तान बना देता है हमारे हृदय में, पर जब ये अमृत, कृष्ण कथामृत, कृष्ण नामामृत, कृष्ण चरणामृत, सब अमृत है, और ये अमृत का कान के द्वारा, मुंह के द्वारा, चरणामृत मुंह के द्वारा, कथामृत कान के द्वारा, नामामृत जिह्वा के द्वारा, दर्शनामृत आंखों के द्वारा, कीर्तनामृत हाथ पैर के द्वारा, और इस तरह से हृदय पूर्ण रूप से अमृत भर जाएगा, और इस जन्म के अंत पर अमृत फिर से, क्या बोलते भगवान, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति, फिर से इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं, मामेति सोऽर्जुन। तो इस तरह से श्रोतव्य, सब सबकी शुरुआत होती है कहां, हमने कान लगाया, सबसे महत्वपूर्ण है किसके बारे में सुनने के लिए हमने कान लगाया, सबसे पहले कौन, क्या बोला, जहां कान लगाया वहां पहुंच जाएंगे। तो होशियार, किसके बारे में आप सुन रहे, थोड़ा ध्यान रखिए। श्रोतव्याधीनी राजेंद्र नाम संति सहस्रशः, तो गृहस्थ का मतलब है, भले जिम्मेदारी है, शरीर है, शरीर की पत्नी है, पत्नी के बच्चे हैं, बच्चे तो घर है, घर है तो परिवार है, समाज है, ये सब कर रहे हैं, पर आत्मा का जो कनेक्शन है भगवान के साथ उसको हमेशा जागृत रखना, वो गृहस्थ, और कृष्ण को बाजू में करके ग्रह को केंद्र किया वो ग्रह मेधी, सिंपल। और हमारा सौभाग्य है कि दो गृहस्थों के बीच में बैठा हूं, तो मैं बहुत सुरक्षित हूं। इसलिए बहुत सुरक्षित हूं, इनको, इन लोगों की खास कृपा मिलती है तभी मैं जीवित हूं। कृष्ण भावना में हरे कृष्णा। तो अभी मैं सुदामा प्रभु से निवेदन करूंगा कि कुछ शब्द कहे, वो बोल रहे थे मेरे को नहीं बोलना है क्योंकि मैं सब अंग्रेजी बोलूंगा, बोलेंगे क्या बोल रहा है, मेरे को हिंदी ठीक से नहीं आता, मैं तो सिर्फ गुजराती बोलने वाला हूं। मैं बोला ठीक है, आपकी टूटी फ्रूटी हिंदी में बोलो, आप टूटी फ्रूटी समझते हैं ना, आइसक्रीम होता बहुत अच्छा, टूटी फ्रूटी बहुत मधुर होता है खाने के लिए, बोला आपका टूटी फ्रूटी हिंदी में ही बोलो, बहुत अच्छा। तो उनके टूटी फ्रूटी हिंदी में अभी 5-10 मिनट बोलेंगे, आप ज्यादा बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण. ये मैं पहली बार हिंदी में लेक्चर दे रहा हूं तो क्षमा करना कोई त्रुटियां हो तो. सो ये दोनों भक्तों ने बताया कि भगवान कृष्ण है ऐसा ही हीरो है और हमारे जो कर्ण है वो भगवान की कथा के लिए ही होनी चाहिए. एक बहुत बढ़िया श्लोक है, मच्चित्ता मदगद प्राण बोधयंतश्च परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. भक्त लोग किस चीज में आनंद लेते हैं वो श्लोक बताता है. ये मच्चित्ता मदगद प्राण बोधयंतश्च परस्परम, कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त लोग जब साथ में आते हैं तो वो मेरे बारे में डिस्कस करते हैं, मेरे बारे में बोध एक दूसरे को कहते हैं. और इसका नतीजा क्या है, इसका रिजल्ट क्या है इस डिस्कशन का. मच्चित्ता मदगद प्राण बोधयंतश्च परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. उनको बड़ा सेटिस्फैक्शन, तुष्टता, तृप्ति, सेटिस्फैक्शन होता है और रमन्ति बड़ा आनंद होता है, बहुत आनंद होता है भगवान की कथा करने का. क्योंकि हम जब भी बताते हैं कि जो मध्य वर्ग के जो हीरो है उसकी कथा करते हैं तो उसमें आनंद नहीं आता है, क्योंकि उनकी जो हम देखते हैं टीवी पे या मूवी में और उनकी जो एक्चुअल लाइफ है उनमें बहुत आसमान जमीन का फर्क होता है. तो हमको जो पता है उसके बारे में हम कथा करेंगे और जो पता है वो सही नहीं है. पर जब कृष्ण के बारे में कथा करते हैं तो बड़ा आनंद आता है. तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद धाम वृंदावन रम्या काच तुपासना व्रज वधु वर्गे न वा कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमार तो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मितमिदम तत्र धरना पर. चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये पांच रहस्य दिए है. वो कहते हैं कि हम किस भगवान की पूजा करते हैं, किसकी, कृष्ण की करते हैं. पर वो बड़े स्पेसिफिकली बताते हैं कि किस कृष्ण, कौन कृष्ण. व्रजेश तनय, जो कि व्रजेश है, जो नंद महाराज उनके सुपुत्र कृष्ण, उनकी हम पूजा करते हैं. हम वासुदेव कृष्ण की नहीं करते, हम देवकी नंदन नहीं करते. पर जो कृष्ण जो वृंदावन में है उसकी हम पूजा करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण की पूजा नहीं करते वासुदेव कृष्ण की, पर सबसे उच्च कोटि का जो अंडरस्टैंडिंग है कृष्ण के, कृष्ण का, वो वृंदावन में है, जो वृंदावन कृष्ण का है. आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद धाम वृंदावन, और सबसे जो महान धाम कौन सा है भगवान, वृंदावन धाम. और सबसे जो महान भक्त कौन है कृष्ण के, व्रजवधु गोपिया. आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना व्रज वधु वर्गे नवाकल्पिता श्रीमद भागवतम. और सबसे बड़ा जो ग्रंथ कौन सा है हमारा, भागवत महापुराण. और हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, पांचवा बताते हैं प्रेम पुमार तो महान, हमको हृदय की शुद्धिकरण करके हमको प्योर लव ऑफ गॉड चाहिए. तो ये सब पॉसिबल है जब हम भगवान की कथा का अपने श्रवण इंद्रिय से श्रवण करते हैं. और भगवान इस कारण बड़ी मधुर कथा और बड़ी मधुर लीला करते हैं ताकि अपना जो हृदय है, अपना जो माइंड है, वो उनके प्रति आकर्षित हो जाए. और खास करके उनकी सब लीलाओं में वृंदावन की लीला बड़ी मधुर है. भगवान बहुत ही मधुर सुमधुर लीला करते हैं ब्रजभूमि में, क्योंकि उनका घर की जमान है. वृंदावन भगवान का घर है, द्वारका भगवान का ऑफिस है. जो व्यक्ति घर पे जैसा व्यवहार करता है उनका एक्चुअल व्यवहार होता है. बराबर है, जो ऑफिस में जाके व्यवहार तो उसका ऑफिशियल व्यवहार होता है, पर जो घर पे जो हम व्यवहार करते हैं उसका एक्चुअल व्यवहार है। प्रभुपाद कथा बताते हैं प्रभुपाद कि एक बार एक बड़े कलकत्ता के मैजिस्ट्रेट थे, बहुत बड़े, उसको मिलने बहुत लोग आते थे। तो एक बार उसने एक व्यक्ति को उसने घर के बुलाया कि एक ऑफिस में नहीं हूं मैं, आप घर पे आ जाओ मुझे मिलने को। तो वो आया और बैठा था, उसको कहा गया कि आप रुकिए, जो मैजिस्ट्रेट साहब है वो बड़े बिजी है। तो ठीक है बैठता हूं मैं। तो वो जो दरवाजा था वो थोड़ा खुला था, उसको दिख रहा था अंदर क्या हो रहा है। तो घर के अंदर वो मैजिस्ट्रेट साहब घोड़े बने हुए थे और उसके उसके जो पौत्र उसके ऊपर बैठे थे और वो चल रहे थे और उसमें आनंद ले रहे थे वो, हा? और बाहर ये व्यक्ति उनके लिए खड़ा था। तुमको समझा कि भाई ये एक्चुअल बिहेवियर है मैजिस्ट्रेट होंगे ऑफिस में, पर घर पे वो घोड़े बन रहे हैं। उसी तरह भगवान कृष्ण सद ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, पर वृंदावन में वो अपना ऐश्वर्य भूल जाते हैं और एक्चुअल जो उनका नेचर है उस तरीके से वो व्यवहार करते हैं। तो एक उनकी बहुत ही सुमधुर लीला है, बहुत ही बढ़िया लीला है। जब ये छोटे थे तो उनके सखाओं के साथ गौचरण करते थे ब्रजभूमि में और रोज पूरे दिन अलग लीला करते थे, अलग अलग डीमंस का संहार करते थे और शाम को वापस आ जाते थे। तो एक दिन उनका जो खास मित्र था श्रीदामा श्रीदामा जो कि श्रीमती राधा रानी का भाई है, वो कहता है कृष्ण कृष्ण भगवान ये बहुत ही तकलीफ हो रही है हमको। तो कृष्ण कहते हैं क्या तकलीफ हो रही है? देखिए भी ये पूरा दिन आपके साथ संग करने का इतना आनंद आता है, पर जब भी शाम आती है और हम रास्ते में साथ में आते हैं तो आप इस तरह चले जाते हैं, हमको इस तरह जाना पड़ता है। आप नंदगांव जाते हैं, हमको बरसाना जाना पड़ता है, ये मजा नहीं आता। पूरा दिन हम पूरी रात आपके लिए रुके होते हैं, सुबह कब होगी और भाग के आपके साथ कब आ जाएंगे, उसके आतुरता से हम वेट करते हैं। पर वो रात काटने के लिए बहुत तकलीफ होती है। एक एक क्षण 12 साल की तरह लगता है, एक एक क्षण। तो एक काम करो कृष्ण भगवान, आपकी एक बढ़िया सी छवि दे दो हमको, एक पेंटिंग दे दो, तो ताकि हम जब भी आपके साथ ना हो आपकी पेंटिंग देख के हम खुश हो जाए। और उस समय तो कोई डिजिटल कैमरा था नहीं, कृष्ण भगवान ले लो भाई और डाल दो इनका लैपटॉप में और देख लो आप। तो कृष्ण भगवान कहे भाई अच्छा छवि चाहिए, तो ठीक है मैं बाद से बताऊंगा, मेरी मैया से बताऊंगा मैं, और हो सके तो आपके ले दूंगा। तो कृष्ण भगवान उसी दिन गए रात को और कहे मैया एक एक तकलीफ है, मेरे जो दोस्त को क्या है वो कहते हैं कि भाई मेरी छवि चाहिए पेंटिंग मेरी। तो मैं बोलती कि तेरी पेंटिंग के बारे में तू ही पूछ रहा है, अपनी खुद की पेंटिंग बनाना चाहता है, ये मेरे लिए नहीं चाहता हूं, मुझे मित्रों के लिए देना है। मैया ठीक है एक पेंटिंग बना देंगे आपके लिए, आप चिंता मत करो। 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, पेंटिंग बनी नहीं। तो श्रीदामा ने वापस पूछा कृष्ण भगवान क्या हुआ वो पेंटिंग के बारे में? ऐसे मैंने तो मैया को बता दिया था पर अभी बता नहीं क्या, मैं वाद दिला दूं वापस आज। तो कृष्ण भगवान वापस फोर्सफुली बताया कि भाई मुझे पेंटिंग चाहिए, वो मेरे दोस्तों को चाहिए, ऐसा डोंट टेक इट इजी, डोंट टेक इट लाइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे वॉन्ट द पेंटिंग, उनको पेंटिंग चाहिए। तो यशोदा माई ने बताया ठीक है हम चिक्षोली से चित्रा सखी को बुलाएंगे। चित्रा सखी जो श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक है, उनका गांव का नाम है चिक्षोली। सो हम चित्रा सखी को बुलाएंगे और चित्रा सखी उनके नाम जैसा है, उनके चित्रा मीन्स बहुत ही एक्सपर्ट थी पेंटिंग में, बहुत ही बढ़िया पेंटिंग करती थी वो। तो उनको बुलाया उन्होंने नंदगांव, कभी आप ये हमारे कान्हा का एक पिक्चर निकालो, पेंटिंग करो। चित्रा सखी कहते ठीक है हम बनाएंगे अच्छा पेंटिंग, पर उसके लिए कान्हा को बैठना पड़ेगा, क्योंकि पेंटिंग करते तो भी आदमी पोर्ट्रेट बनाते तो बैठना पड़ता है ना। कान्हा बता देखो मैं बैठूंगा नहीं, मुझे ये सब टाइम नहीं है बैठने का, आप देख लो मुझे हाँ, और फिर तो मैं मेरी सेवा मेरे गौचरण जाऊंगा और फिर बना दो पेंटिंग। तो कृष्ण भगवान ने अच्छा सा पोज दे दिया, एक ऐसा करके दे दिया और फिर चले गए। तो चित्रा सखी आप देखो ये क्या, ये भक्तों का जो प्योर डिवोटीज है उनका चित्रा सकी आंख बंद करके जो उस जो रूप जो भगवान का रूप था उस पे ध्यान करना चाह रही थी। वो जैसे वो आंख बंद कर रही थी भगवान के हजारों हजारों रूप उसके माइंड में आ रहे थे, हजारों रूप। हमको क्या होता है जब हम आंख बंद करते हैं? हम जब हम आंख बंद करते हैं तो क्या क्या होता है, किस तरह के रूप आते हैं अपने सामने, हमको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। पर चित्रा सखी जब आंख बंद कर रही थी तो हजारों रूप कृष्ण के आ रहे थे। वो बोले कि मैं मुझे पेंटिंग करना है तो मुझे एक रूप पे फोकस करना पड़ेगा, ये हजार रूप आ रहे हैं मैं पेंटिंग नहीं कर पा रही हूं। तो ट्राई कर रही है, एक पेपर पे पेपर फेंक दिया, ट्राई कर वापिस फेंक दिया दूसरा पेपर, नहीं हो रहा है। तो उसने कहा यशोदा माई ये थोड़ा कुछ जम नहीं रहा है, नंदगांव में नहीं जम रहा, मैं जाती हूं वापिस शिक्षोली, शिक्षोली में ट्राई करूंगी पेंटिंग करने का और फिर आपको दे दूंगी। ठीक है जाइए। तो वो गई वापिस अपने घर पे और वापिस पेंटिंग करना शुरू किया। पर जैसे ही आंख बंद करके एक दृश्य को सोचती थी हजारों कृष्ण के दृश्य आ जाते थे माइंड में। तो ये बोला कि ये तो यार ये तकलीफ हो रही है मुझे, ये शुद्ध भक्त की तकलीफ दे भी देखो क्या हो रही है, ज्यादा भगवान उनके सर में माइंड में आ रहे वो तकलीफ हो रही है उनसे, ये उनका प्रॉब्लम है। ये कहते एक बार की गोपिया प्रे कर रही थी कि जब कृष्ण चले गए मथुरा, एक कह रही थी कि हमको ये कृष्ण को भूलना है पर हम भूल नहीं पा रहे उसको। They are praying that we want to forget this debauchee Krishna. We want to forget him. हमको भूलना है उसको पर हम ये भूल नहीं सकते उसको। उनका प्रॉब्लम था क्योंकि जितना उनका हम ट्राई करें भूलने को उतना हम ज्यादा ही उसको रिमेंबर कर रहे हैं, और हम जब भी जपा करके उनको ट्राई कर रहे हैं याद करने का, वो भी याद नहीं आ रहा है, सो रहे हैं, माई यहां वहां जा रहा है। आज जब भी मैं जपा कर रहा था सहसूर प्रभु ने 3 बार टिक टिक किया, क्योंकि पता था हम सो रहे थे, हम जपा के बाद सबको नींद आती है, कोई आकर्षण नहीं है। तो चित्रा सखी ने कहा कि भाई तो बड़ा धर्म संकट है ये, यशोदा माई को मैं सेवा नहीं कर पा रही हूं। तो वो गई ऊंचा गांव, उसकी जो गुरु है उनकी जो वरिष्ठ गोपी है ललिता सखी उनके पास गई कि ललिता सखी एक बड़ा धर्म संकट है, आप मुझे हेल्प करिए, मदद करिए। ये क्या हुआ कि मुझे ये सेवा दी गई है कृष्ण का एक चित्र निकालने का, अपन नहीं कर पा रही हूं मैं, जैसे मैं आगमन करती हूं हजारों दृश्य आ जाते कृष्ण के, मैं नहीं कर पा रही हूं। तो ललिता सखी ने एक बड़ा गुह्य स्टेटमेंट बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सब भक्तों के लिए। जैसे चित्रा सखी आपकी ये जो सेवा कर रहे हो कृष्ण के लिए, क्या आपने श्रीमती राधारानी का आशीर्वाद लिया ये सेवा करने के पहले? से नहीं लिया तो कैसे कर पाएंगे आप कृष्ण की सेवा अगर हम राधारानी का आशीर्वाद नहीं लेंगे? चलो अभी जाते हैं बरसाने धाम और जाते हैं भानगढ़ जहां वृष भानु लेते हैं और ललित और श्रीमती राधारानी के चरण में पड़ते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के बिना कृष्ण की सेवा नहीं हो सकती। प्रभुपाद जी कहते हैं पुण्य कोरिबे जबे राधा रानी खुशी हो बे। प्रभुपाद एक महान भक्त थे श्रीमती राधारानी के, और वो लिखते हैं कि जब आप श्रीमती राधारानी की सेवा आप सेवक हो जाएंगे तभी सब पुण्य हो जाएगा आपका। ये गौड़ीय संप्रदाय का गुह्य ज्ञान है राधा पाद दास्यम, कि हम सब राधारानी को खुश करेंगे तो कृष्ण ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। सो वो जाते हैं श्रीमती राधारानी के पास और राधारानी के चरण कमल को स्पर्श करते हैं कि श्री राधिका जी मुझे ये चित्र बनाना है, आप कृष्ण के आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। राधारानी आशीर्वाद देती है और थोड़े ही समय में वो भगवान का बड़ा ब्यूटीफुल चित्र निकालती है और यशोदा माई को देती है, और यशोदा माई श्रीदाम कृष्ण को देते हैं, कृष्ण श्रीदामा को देते हैं, और उस तरह से वो चित्र रखते हैं अपने पास। तो बड़ी सिंपल कहानी है ये ब्रज की, बड़ी मधुर कहानी है। इसमें से 2 चीज हम सीखते हैं, कि हम बहुत ही दूर है भक्ति से, शुद्ध भक्ति जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उससे बहुत ही दूर है, क्योंकि जब हम शुद्ध भक्त हो जाएंगे तभी 1 मिनट के लिए भी भगवान को हम भूल नहीं पाएंगे, अगर चाहते हुए भी हम नहीं भूल पाएंगे। हाँ, तो उस तो ये कहानी हमको नम्र बनाती है कि जब तक हम उस स्टेज पे नहीं है जहां एक एक सेकंड भी हम भगवान को नहीं भूल पा रहे, तब तक हमको निरंतर रूप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप अटेंटिवली साधना पूर्वक करना चाहिए। और दूसरा रहस्य है कि अगर हम कृष्णा जो कि उसका नाम है मदन मोहन, जो उनकी हम उनको खुश करना चाहते हैं, तो हमको मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी का को खुश करना चाहिए। रूप गोस्वामी उनके फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज में कहते हैं, एक ज्ञान के बताते हैं, द कृष्णा इज मदन मोहन। अगर हमको कृष्ण को प्लीज करना है तो मदन से दूर होना पड़ेगा, एक काम वास्ता से दूर होना पड़ेगा। वृंदावन में एक स्थल है जिसका नाम है मदन टेर, जो मदन जी क्यूपिड जो कि हम सबको हैरान करते हैं, अभी भी काफी लोगों को हैरान कर रहे हैं। मदन जी ने कहा कि मुझे एक मेरा जो काम वासना का बाण है वो कृष्ण को मैं कृष्ण की तरफ मारना चाहती हूं चाहता हूं। कृष्ण ने उसको कहीं देखा और वो एक ही दृष्टि में भस्म कर दिया मदन कामदेव को, एक ही दृष्टि से। तो उस नाम का नाम है मदन टेर। तो कृष्ण मदन मोहन है और मदन को भी मोह लेते हैं, हाँ, पर श्रीमती राधारानी और मदन मोहन मोहिनी, जो मदन मोहन है उसको भी मोहने वाले श्रीमती राधारानी है। और अगर हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं प्रभु जी और माता जी हो, तो हम श्रीमती राधारानी को खुश करना चाहिए। और श्रीमती राधारानी को कैसे खुश करेंगे, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव से स्पिरिचुअल मास्टर वो श्रीमती राधारानी के रिप्रेजेंटेटिव है और उनकी आज्ञा अनुसार हम सेवा करते हैं, तो वो जब सेवा जो दे रही है हमको वो एक्चुअली श्रीमती राधारानी के गिफ्ट है हमको। सभी सेवा का प्रोप्राइटर श्रीमती राधारानी है और किसके पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और जब सेवा मिलती है वो श्रीमती राधारानी की असीम कृपा होने के बाद ही हमको मिलती है सेवा। तो सेवा को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। जब राधा रानी की मर्सी हार रही है उसको हम ना नहीं बोल सकते। और सबसे बेस्ट सेवा क्या है, जो प्रभु जी दोनों प्रभु जी ने बताया, हाँ, कि यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश अमार आज्ञा गुरु है तारा ये देश। जो गौरंग महाप्रभु जो कि राधा के भाव में आए थे इस जगत में, वो कहते हैं कि द बेस्ट सेवा है प्रचार कार्य में लग जाओ, हो सके तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरण में लेके आओ और साथ साथ में जन्म सार्थ करी कर परोपकार। अगर खुद का कोई ठिकाना नहीं है तो कैसे हम दूसरों को ठिकाना करेंगे। तो दिन सुबह का जो टाइम दिया है भगवान ने वो खुद का उद्धार के लिए दिया है और शाम का टाइम दिया है वो लोगों का उद्धार के लिए दिया है। सुबह को अच्छा जपा करो, भागवत स्मरण करो, भक्तों का संग करो, हो सके उतना जो भी नौकरी जो करते हो करो, पूरा दिन दिया है। शाम को हो सके उतना मंदिर में आओ, भक्तों का संग करो, प्रोग्राम दे दिए और इस तरह से पूरा बैलेंस हो जाएगा अपना लाइफ। जन्म सार्थ करी कर परोपकार, तो उस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस अलग अलग जो कथा है भगवान की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस कथामृत से नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। जब भागवत सेवा करते हैं तो क्या होता है, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। प्योर डिवोशनल सर्विस इज एस्टैब्लिश्ड इन योर हार्ट एज अ इरेवोकेबल फैक्ट। वो अपने हृदय में शुद्ध भक्ति बड़ी सहजता से जागृत हो जाएगी कथा करने से। सो कथा बड़ी इंपॉर्टेंट है, भक्तों के साथ कथा। भक्ति का जन्म कहां होता है, चैतन्य चिंतामणि बताती है, भक्ति का जन्म होता है भक्तों के संग में। साधु संग इज अ बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति। साधु संग में जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तो भक्ति का यहां उगम स्थान है ये। सो यहां इतने सारे भक्त है और इतनी अच्छी कथा हो रही है, यहां भक्ति का जन्म हो रहा है और यहां जाने के बाद हमको कंटिन्यू करना है अपना साधना, अपना कृष्ण भक्ति और हो सके उतना कृष्ण कथा और खास करके हो सके तो ब्रज कथा कृष्ण की सहज भाव से नहीं, प्रभुपाद के परपोट के द्वारा समझ के हम ब्रज कथा का आस्वादन करेंगे तो शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में तुरंत ही जागृत हो जाएगी और इस हम जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर होकर जहां भी प्रभुपाद हमको लेने जाना चाहते हैं हम वहां जाएंगे और भगवान के चरण में सेवा करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोपीनाथ ललिता विशाखा गण की जय।
श्री रामा प्रभु की
जय। श्री राधा गोपीनाथ प्रभु की
जय।
श्री मुरलीधर प्रभु की
जय।
ताई गौर प्रेमानंदी
जय।